एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, जेन शेरोन डी हार्ट की लिखी जीवनी रूथ बेडर गिन्सबर्ग, ए लाइफ। ये किताब हमें रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिन्हें हम सब प्यार से आरबीजी भी कहते हैं, उनके असाधारण जीवन और उनके काम की गहराइयों में ले जाती है।
जी, रूथ बेडर गिन्सबर्ग मतलब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज, लेकिन जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक जज तो थी नहीं, वो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा चेहरा थी।
बिल्कुल।
उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कानूनी दायरे में रहकर भी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भेदभाव को चुनौती दी जा सकती है।
हाँ, और उनकी कहानी आज भी कितनी जरूरी है। सोचना भी अजीब लगता है कि ब्रुकलिन की एक शर्मीली सी लेकिन बेहद तेज लड़की, जिसे इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, वो अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी।
सही कहा, उनकी यात्रा दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और रणनीति सही हो तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।
तो आज हम उनके इसी सफर, उनके विचारों को और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। रूथ के शुरुआती साल कैसे थे, उनका परिवार, माहौल?
हाँ, तो जॉन रूथ बेडर का जन्म हुआ 1933 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। परिवार यहूदी अप्रवासी था। पिता नेथन फर का छोटा मोटा काम करते थे और वो महामंदी का दौर था, तो आर्थिक तंगी तो थी ही। लेकिन परिवार की जो बौद्धिक और भावनात्मक धुरी थी, वो थी उनकी माँ सीलिया बेडर। सीलिया खुद बहुत बहुत होशियार थी। 15 साल में ही हाईस्कूल पास कर लिया था, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाई।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि उस जमाने में परिवार ने उनके भाई को पढ़ाने को ज्यादा जरूरी समझा।
ये उस वक्त की सच्चाई थी।
शायद ये बात उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं कचोटती रही।
और किताब बताती है कि सीलिया का रूथ पर बहुत गहरा असर पड़ा।
जी बिल्कुल, ये उनकी कहानी का एक केंद्रीय हिस्सा है। सीलिया ने रूथ को दो बहुत जरूरी बातें सिखाई जो उनकी पहचान बनी। पहली, एक महिला की तरह व्यवहार करो, बी ए लेडी।
इसका क्या मतलब था उनके लिए?
इसका मतलब दब्बू बनना नहीं था, बल्कि ये था कि गुस्सा, जलन, बदला, इन फालतू की भावनाओं में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। मुश्किल में भी शांत रहो, गरिमा बनाए रखो, आपा मत खो।
और दूसरी सीख?
दूसरी थी, आत्मनिर्भर बनो, बी इंडिपेंडेंट। आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से किसी पर निर्भर मत रहो, अपने पैरों पर खड़े हो। ये दोनों बातें रूथ के अंदर उतर गई। वो बाहर से शांत दिखती थीं, लेकिन अंदर इरादे बहुत मजबूत थे।
लेकिन फिर उनकी टीनेज में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई।
हो गया, और रूथ के ग्रेजुएशन से ठीक एक दिन पहले उनकी मौत हो गई।
ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा।
जाहिर है, वो अपनी माँ के बहुत करीब थीं, लेकिन शायद इस दुख ने उनके मकसद को और पक्का कर दिया। किताब इशारा करती है कि रूथ ने ठान लिया कि वो बौद्धिक जीवन जिएंगी जो उनकी माँ नहीं जी पाई। उनकी हर कामयाबी एक तरह से माँ को श्रद्धांजलि थी।
इसके बाद शुरू हुआ उनका पढ़ाई का सफर और फिर करियर की शुरुआती मुश्किलें।
जी, उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। वहीं उनकी मुलाकात हुई मार्टी गिन्सबर्ग से। मार्टी उनके जीवन में बहुत बड़ा सहारा बने। उनका रिश्ता उस वक्त के हिसाब से काफी मॉडर्न था, बराबरी का। मार्टी हमेशा रूथ की काबिलियत के कायल रहे। फिर 1956 में रूथ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। सोचिए, 500 से ज्यादा लड़कों की क्लास में सिर्फ 9 लड़कियां।
सिर्फ 9? ये तो माहौल बहुत मुश्किल रहा होगा।
बेहद मुश्किल, कहीं कहीं तो खुला विरोध भी था। किताब में वो किस्सा है जब डीन ने डिनर पर सभी महिला छात्रों से पूछा कि वो मर्दों की सीट क्यों घेर रही हैं।
क्या डीन ने ऐसा पूछा?
हाँ, ऐसे माहौल में पढ़ना ही एक जंग थी। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। इसी दौरान उनके पति मार्टी को कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर। रूथ ने न सिर्फ मार्टी की देखभाल की, उनके नोट्स लिए, उनके काम टाइप किए, बल्कि अपनी छोटी बेटी जेन को भी संभाला और अपनी पढ़ाई में भी टॉप पर रही, हार्वर्ड लॉ रिव्यू में जगह बनाई।
ये तो अविश्वसनीय लगता है।
बिल्कुल। बाद में मार्टी को न्यूयॉर्क में नौकरी मिली तो रूथ कोलंबिया लॉ स्कूल चली गई और वहां भी क्लास में फर्स्ट आई। लेकिन इतनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन के बाद भी नौकरी मिलना मुश्किल हो गया।
क्यों?
न्यूयॉर्क की बड़ी लॉ फर्म्स ने उन्हें मना कर दिया। वजह? वो एक महिला थी, एक माँ थी और यहूदी थी।
मतलब खुला भेदभाव।
हाँ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने भी उन्हें क्लर्कशिप देने से मना कर दिया। कहा कि वो अभी एक महिला क्लर्क रखने को तैयार नहीं है।
ये शुरुआती झटके और भेदभाव शायद यही वो वजह बने जिसने उन्हें आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया।
हाँ, कह सकते हैं इन अनुभवों ने उन्हें सिस्टम में मौजूद लिंग भेद की सच्चाई का एहसास कराया। जब अच्छी लॉ फर्मों ने दरवाजे बंद कर दिए तो वो एकेडेमिक्स में चली गईं। पहले रटकर्स, फिर कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर बनी। कोलंबिया में वो कार्यकाल टेन्यो पाने वाली पहली महिला प्रोफेसर थीं।
अच्छा।
और यहीं से उन्होंने महिला अधिकारों पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। 1971 में उन्होंने ACLU यानी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के साथ मिलकर विमेन्स राइट्स प्रोजेक्ट की सह स्थापना की।
तो वो अब सिर्फ प्रोफेसर नहीं रही, एक एक्टिविस्ट बन गई।
एक तरह से हाँ, एक रणनीतिकार।
और यहीं से उनकी वो जानी मानी कानूनी रणनीति सामने आई, वो धीरे धीरे बदलाव लाने वाली।
जी बिल्कुल, उनकी रणनीति बहुत सोची समझी थी, कदम दर कदम आगे बढ़ने वाली, इंक्रीमेंटलिज्म जिसे कहते हैं। उनका मकसद था पुरुष प्रधान जजों को यह समझाना कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना संविधान के 14वें संशोधन के इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज का उल्लंघन है।
अच्छा, जो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है।
हाँ, और उनकी रणनीति बहुत होशियारी भरी थी। उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे केस चुने जिनमें पीड़ित पुरुष थे।
पुरुष?
हाँ।
क्यों?
ये दिखाने के लिए कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लिंग आधारित रूढ़ियाँ सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे वाइनबर्गर वी विजिनफेल्ड वाला केस था 1975 का। एक विधुर पिता को वो सरकारी फायदे नहीं मिल रहे थे जो विधवा माँ को मिलते। उन्होंने तर्क किया कि ये भेदभाव मर्द होने पर आधारित था, क्योंकि कानून मान रहा था कि बच्चे सिर्फ माँ ही पाल सकती है। इससे उन्होंने साबित किया कि लैंगिक भेदभाव सबके लिए बुरा है।
ये तो बहुत स्मार्ट तरीका था सोचने का।
जी, और उनकी एक बड़ी शुरुआती जीत थी 1971 का रीड वर्सेस रीड केस। उन्होंने उसकी मुख्य अपील लिखी थी। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है। ये एक मील का पत्थर था।
और इन जीतों के बाद ही उनके लिए जज बनने का रास्ता खुला।
हाँ, 1973 से 76 के बीच ACLU के लिए वकील रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसों में बहस की और 5 जीते।
ये बहुत बड़ी बात थी,
5 केस जीते सुप्रीम कोर्ट में।
हाँ।
तो 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने उन्हें DC सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में जज बनाया। ये अमेरिका की दूसरी सबसे अहम अदालत है। वहाँ उन्होंने 13 साल काम किया। एक निष्पक्ष और समझदार जज के तौर पर उनकी पहचान बनी।
और फिर सुप्रीम कोर्ट?
जी, 1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें नॉमिनेट किया। कहते हैं कि उनके पति मार्टी ने इसके लिए काफी लॉबिंग की थी।
अच्छा।
वो जस्टिस सैंड्रा डे ओकॉनर के बाद सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज बनी।
सुप्रीम कोर्ट में उनका काम कैसा रहा? क्या वहाँ भी वो धीरे धीरे बदलाव पर ही फोकस रही?
वहाँ उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा। इसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआती सालों में जब कोर्ट उतना बटा हुआ नहीं था, वो अक्सर बहुमत बनाने में मदद करती थीं। एक आम सहमति बनाने वाली जज मानी गई।
जैसे कोई खास केस?
हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है 1996 का यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वर्जीनिया केस। इसमें कोर्ट ने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट की सिर्फ मर्दों को एडमिशन देने वाली पॉलिसी को गलत ठहराया। RBG ने बहुमत की राय लिखी थी। ये उनके लैंगिक समानता के काम का शिखर था। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट और रूढ़िवादी होता गया, जस्टिस गिन्सबर्ग की भूमिका बदल गई। वो अक्सर अल्पमत में रहने लगीं और बहुत जोरदार असहमति, डिसेंट लिखती थीं।
असहमति मतलब फैसले से अलग राय।
हाँ, जैसे लेडबेटर बनाम गुडियर केस था वेतन में भेदभाव पर, या शेल्बी काउंटी बनाम होल्डर केस वोटिंग अधिकारों पर। इन मामलों में उनकी लिखी असहमतियां बहुत प्रभावशाली थीं। वो सिर्फ कानूनी तर्क नहीं थे, वो भविष्य के लिए न्याय की पुकार जैसे थे, और वो काफी मशहूर भी हुई।
और इसी दौरान वो नोटोरियस RBG बन गई। ये कैसे हुआ?
हाँ, ये थोड़ा अचानक ही हुआ। 2013 के आसपास एक लॉ स्टूडेंट ने उनके तीखे विचारों से प्रभावित होकर उन्हें मशहूर रैपर नोटोरियस BIG के नाम पर ये निकनेम दिया।
अच्छा।
और देखते ही देखते ये नाम चल पड़ा। टी शर्ट्स, मीम्स, किताबें। एक 80 साल की शांत सी जज अचानक युवाओं के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गई।
ये तो वाकई दिलचस्प है।
जी, अपने आखिरी सालों में उन्होंने कैंसर से कई बार लड़ाई लड़ी। कोलोन कैंसर, पैंक्रियाटिक, फेफड़ों का। लेकिन हर बार वो काम पर लौटी।
गजब की इच्छा शक्ति थी।
बहुत। ओबामा के टाइम उन पर रिटायर होने का दबाव था ताकि कोई और लिबरल जज आ सके, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये फैसला काफी विवादों में रहा। और फिर सितंबर 2020 में 87 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर से उनका निधन हो गया।
उनके इस लंबे और प्रभावशाली जीवन के पीछे उनका मूल दर्शन क्या था? क्या चीज थी जो उन्हें हमेशा गाइड करती रही?
उनके कानूनी दर्शन का जो सार था वो था जीवित संविधान या लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना था कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बस 18वीं सदी के नजरिए से देखें, बल्कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता, उन्हें समय के साथ विकसित होना चाहिए ताकि वो उन लोगों को भी शामिल कर सकें जिन्हें शायद पहले नजरअंदाज किया गया था, जैसे महिलाएं।
मतलब संविधान को आज के समाज के हिसाब से समझना।
हाँ बिल्कुल, उसे उसके अपने ऊंचे आदर्शों, खासकर बराबरी के वादे को पूरा करने में मदद करना।
और उनकी रणनीति, वो कदम दर कदम वाली।
जी, ये उनके दर्शन का दूसरा हिस्सा था, रणनीतिक वृद्धिवाद,
स्ट्रैटेजिक इंक्रीमेंटलिज्म।
जी, वो मानती थी कि अदालतें अगर एकदम से बड़े बदलाव लाने की कोशिश करती हैं तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उल्टा रिएक्शन होता है।
अच्छा।
इसलिए वो छोटे तार्किक कदमों पर यकीन करती थी। धीरे धीरे केस दर केस जीत कर कानूनी और सामाजिक सोच को बदलना ज्यादा टिकाऊ होता है। उन्होंने खुद को मास्टर ईंट बनाने वाला कहा था, जो सावधानी से एक एक ईंट रखकर मजबूत दीवार बनाता है।
ये तो भी उनकी कानूनी सोच, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनकी प्रेरणा क्या थी?
किताब तीन मुख्य प्रेरणाओं की बात करती है। पहली और शायद सबसे गहरी उनकी माँ सीलिया की विरासत। वो हमेशा अपनी माँ के अधूरे सपनों को जीने की कोशिश करती रहीं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बहुत व्यक्तिगत मिशन था। दूसरा, भेदभाव का अपना अनुभव। हार्वर्ड से लेकर लॉ फर्म तक उन्होंने खुद लिंग भेद और यहूदी विरोधी सोच झेली थी। इससे उनके तर्कों में एक सच्चाई और जुनून था।
और तीसरा?
तीसरा, अमेरिकी कानूनी सिस्टम में भरोसा। सारी कमियों के बावजूद वो मानती थीं कि न्याय पाने के रास्ते इसी सिस्टम के अंदर हैं। वो इसे तोड़ना नहीं, सुधारना चाहती थीं।
और जब उन्हें विरोध झेलना पड़ता था तो वो गुस्सा या हताशा कैसे संभालती थीं?
यहीं पर उनकी माँ की वो सीख काम आती थीं, बी अ लेडी, मतलब भावनाओं को काबू में रखना। जब अन्याय होता तो वो चिल्लाती नहीं थीं, वो उस एनर्जी को अपनी तैयारी में लगाती थीं, और मेहनत करती और पढ़ती, अपने तर्क और पहने करती।
मतलब उनका हथियार भावनाएं नहीं, दिमाग था।
बिल्कुल, जबरदस्त बौद्धिक तैयारी और मेहनत। वो अपने विरोधियों को अपनी काबिलियत से चुप कराती थीं।
उनके इतने लंबे जीवन में ऐसे कौन से तीन खास मोड़ थे जिन्होंने उनकी दिशा बदल दी?
पहला तो यकीनन उनकी माँ सीलिया की मृत्यु 1950 ही थी। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ दुख नहीं था, इसने उनके जीवन को एक मकसद दिया। माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प, ये उनके लिए एक ध्रुव तारा बन गया।
और दूसरा?
दूसरा अहम मोड़ था लॉ फर्मों और क्लर्कशिप से इनकार, 1960 का दशक। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, इसने उन्हें व्यवस्था के अंदर के भेदभाव का सीधा अनुभव कराया, अपनी काबिलियत के बावजूद दरवाजे बंद देखना।
इसने रास्ता बदल दिया उनका।
हाँ, अगर नौकरी मिल जाती तो शायद वो कॉर्पोरेट लॉयर बन जाती, लेकिन इन इनकारों ने उन्हें एकेडमिक्स और फिर महिला अधिकारों की लड़ाई की तरफ धकेला। इसी अन्याय ने उनके सबसे जरूरी काम की नींव रखी।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मैं मानूंगी ACUL के लिए फ्रंटियरो बनाम रिचर्डसन 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट में बहस करना। वो एक महिला एयरफोर्स ऑफिसर के पति के लिए समान लाभ मांग रही थी। बहस में उन्होंने कहा, मैं अपने लिंग के लिए कोई एहसान नहीं मांगती, बस भाइयों से कहती हूँ कि वो अपनी एड़ियां हमारी गर्दनों से हटा लें।
वाह।
हालांकि कोर्ट उनकी उम्मीद जितना आगे नहीं गया, पर 8-1 की जीत बहुत बड़ी थी। इस बहस ने उन्हें एक शक्तिशाली वकील और महिला अधिकारों की बड़ी आवाज बना दिया।
रूथ बेडर गिंसबर्ग का जीवन हमें आज क्या सिखाता है? हम क्या सीख सकते हैं उनके संघर्षों से?
बहुत कुछ। पहला तो यही कि गुस्से और निराशा को एक्शन में कैसे बदलें। उन्होंने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव एनर्जी में बदला, ये बहुत प्रेरणा देता है।
और तैयारी का महत्व?
बिल्कुल, तैयारी की ताकत। वो दिखाती हैं कि मेहनत और बारीकी पर ध्यान देना कितना जरूरी है। और जस्टिस स्कालिया के साथ उनकी दोस्ती, जो उनसे बिल्कुल अलग सोचते थे।
हाँ, वो ओपेरा वाली दोस्ती।
जी, वो सिखाती हैं कि गहरे मतभेदों के बावजूद सम्मान और दोस्ती मुमकिन है। उनका वो कहना, आप असहमत हो सकते हैं बिना असहमत हुए।
आज के माहौल में ये बहुत जरूरी बात है।
बहुत ज्यादा। विचारों से लड़ें, इंसान से नहीं।
उनकी वो कदम दर कदम वाली रणनीति भी एक सबक है।
हाँ, वृद्धिशीलता से स्थायी परिवर्तन, ये धैर्य और लंबी सोच का महत्व बताता है। हर बदलाव क्रांतिकारी नहीं होता, छोटे लगातार कदम ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं।
और उनकी शादी, मार्टी के साथ उनका रिश्ता,
वो भी एक अहम सबक है। एक सपोर्टिव पार्टनरशिप की ताकत, कैसे एक दूसरे की मदद करके असाधारण चीजें हासिल की जा सकती हैं। उनकी कहानी आज भी हमें न्याय, बराबरी और सभ्य बातचीत की याद दिलाती है।
तो इस पूरी चर्चा के आखिर में रूथ बेडर गिन्सबर्ग के जीवन से हम तीन मुख्य बातें क्या याद रख सकते हैं?
जरूर, तीन खास बातें ये हो सकती हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। उनकी माँ सीलिया का असर उन पर जीवन भर रहा। माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये दिखाता है कि हमारे रिश्ते और विरासत हमें कितना गहरा मोटिवेशन दे सकते हैं। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। उनकी वो मास्टर ईट बनाने वाली की तरह कदम दर कदम चलने वाली कानूनी रणनीति। उन्होंने सिस्टम के अंदर रह के ही बहुत होशियारी से धीरे धीरे लैंगिक भेदभाव की नींव को कमजोर किया।
वेरी गुड।
ये कानूनी और रणनीतिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है।
और तीसरी?
तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि की दृढ़ता। सही रणनीति और नागरिक शिष्टाचार, ये तीनों मिलके लंबा और टिकाऊ बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद अगर लगन हो, सही तरीका हो और दूसरों का सम्मान हो, विरोधियों का भी, तो बड़ा बदलाव मुमकिन है। उनका वो असहमति रखते हुए भी असहमत न होने का सिद्धांत आज के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।